बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 10 दिसंबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले मुख्तार अंसारी बीएसपी से मिले। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावों से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। उत्तराखंड में कांग्रेसी विजय बहुगुणा अपने समर्थकों समेत बीजेपी में आ गए। सवाल यह है कि क्या दल बदलू नेताओं की विचारधारा और पार्टी के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं? जिस तरह से नेताओं के बीच दल बदल हो रहा है, ऐसे में मतदाता या कार्यकर्ता किसके प्रति समर्पित रहे? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1800 102 7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। भारत प्रशासित कश्मीर में सीमा के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन होने से भारतीय सेना के 6 जवान बर्फ में दब गए हैं। श्रीनगर से करीब 180 किलोमीटर दूर माछिल सेक्टर में सेना का एक पेट्रोल हिमस्खलन की सद में आकर बर्फ के नीचे दब गया था। श्रीनगर में सेना के प्रवक्ता राजेश कालिया ने बीबीसी को बताया कि अभी तक किसी भी सैनिक को बर्फ से निकाला नहीं जा सका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी का घोषणा पत्र आज लखनऊ में जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को लोक संकल्प पत्र नाम से जारी किया है। एक बार फिर भाजपा ने राम मंदिर बनाने का वादा किया है, लेकिन इस बार पार्टी ने संवैधानिक तरीके का हवाला दिया है। अमित शाह ने कहा कि विकास और राम मंदिर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे लोकसभा चुनाव में किए गए वायदों को पूरा करें।
जो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे वे हर स्तर पर अच्छे दिन दिखाने के असंख्य चुनावी वायदे किए थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही, जैसे आज कुछ दिन गिनाए थे ना, मैं समझती हूँ कि इन्होंने अपने ये सभी लोकसभा चुनावी वायदे अब तक भी पूरे नहीं किए हैं, जबकि केंद्र में इनकी सरकार को बने हुए अब लगभग 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
ये थी बसपा प्रमुख मायावती। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में 20 दिन से लापता ब्लॉगर सलमान हैदर लौटाए हैं। वो इस्लामाबाद से गायब हुए थे। पिछले कुछ हफ्तों में उदारवादी विचारधारा वाले 5 कार्यकर्ता पाकिस्तान में लापता हो गए हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। सलमान हैदर के भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ठीक हैं, लेकिन वो कहाँ थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस बीच सरकारी एजेंसियों पर पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं के गायब होने में शामिल होने के आरोप लगते रहे, हालांकि सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। 6 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की कड़ी निंदा हो रही है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी मूल्यों से धोखा है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जियां मार्क एरोल्ट ने कहा कि ये फैसला चिंता का विषय है। जिन देशों से शरणार्थियों के आने पर रोक लगाई गई है उनमें ईरान भी शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर ये कहा।
امروز زمانی نیست که بین ملت‌ها
ये देशों के बीच दीवारें बनाने का समय नहीं है। वो भूल गए हैं कि बर्लिन की दीवार को भी सालों बाद तोड़ दिया गया था। देशों के बीच भी अगर दीवार है तो उसे गिरा दिया जाना चाहिए। ये थे हसन रूहानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंटरनेट कंपनी गूगल ने कई देशों में यात्रा कर रहे अपने कर्मचारियों को जितनी जल्दी हो सके अमरीका लौटने को कहा है। गूगल ने अपने कर्मचारियों से अमरीका में शरणार्थियों पर लगने वाली रोक लागू होने से पहले लौटने को कहा है। गूगल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से 100 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे, बल्कि कंपनी ने यह भी कहा है कि इससे अमेरिका में आने वाले प्रतिभावान लोगों पर भी काफी फर्क पड़ेगा। सीरिया की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से राजधानी दमिश्क के लिए पानी की आपूर्ति करने वाले स्रोत को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है। सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक वादी बारादा इलाके में आइन अल फिज्र पंप परिसर में सीरिया का झंडा फहरा रहा है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आज का बड़ा रोचक है और विषय हम मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि चुनावों से पहले जो दल बदल हुआ है तो पार्टी कार्यकर्ताओं के पास सोचने का टाइम है कि वो किसके लिए कैंपेन करें, वो किसके पक्ष में मतदान करें। बड़ी भ्रम की स्थिति है और एक साथ बहुत सारे हमारे जो नेता हैं उन्होंने पाला बदल लिया। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिका नंद सहाय जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर से हमारा नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 1811-7000 पर। तो अंबिका जी, सबसे पहला तो सवाल यही है कि हमारे श्रोताओं को बताइए कि कितने नेता हैं जिन्होंने पाला बदला एन चुनावों से पहले। मुख्तार अंसारी बीएसपी में आ गए। कुछ दिनों पहले तक वो समझौते की कोशिश हो रही थी कि एसपी में चले जाएंगे। रीता
विलय भी हो गया था, भी हो गया और फिर वापस आए,
फिर वापस आ गए,
फिर बसपा में गए।
हाँ, रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेसी थी, बीजेपी में आ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे, बीजेपी में आ गए। और उत्तराखंड में तो भयंकर, जिसको कहते हैं ना, दल बदल हुआ,
जबरदस्त।
विजय बहुगुणा जो कि यानी कि भाई बहन दोनों ही, रीता बहुगुणा उनकी बहन है और जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, अपने दल बल समर्थकों विधायकों समेत बीजेपी में आ गए। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो ये सबसे पहली चीज तो यही है कि आखिरकार ये दल बदल क्यों रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा है या फिर जीतने की संभावना कम है?
ये बहुत बहुत उचित प्रश्न है मोहनलाल जी। देखिए, हमें समझना होगा कि यूपी चुनाव पे इतना जबरदस्त स्टेक है दोनों का, मोदी पक्ष का भी और मोदी विरोधी पक्ष का भी, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया रह गई है। मतलब किसी तरह किसी दल में जीतने वाला कैंडिडेट है और वो इधर आना चाहता है, चाहे कीमत जो हो। कीमत से कहने का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है। हर कीमत पे, कहने का मतलब उसे ले आओ, और ले आया गया। अब लेकिन इससे एक समस्या भी पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ऐसी मान्यता है कि डिसिप्लिन पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, और जब यहाँ इम्पोर्टर्स का हमला होता है तो ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाता है तो वहाँ विद्रोह लाजमी है। प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट्री क्षेत्र के ऑफिस पे देखिए, कल ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि मौर्या जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके गाड़ी के आगे लोग लेट गए। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में हुआ। तो विद्रोह भी पार्टी के अंदर से ही शुरू हो रहा है। हिंदू वाहिनी सेना ने तो तकरीबन 35 कैंडिडेट उतार दिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि उनके प्रणेता योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में है और वो अपील कर रहे हैं, फिर भी ये समस्याएं पैदा हो रही है।
ये तो विद्रोही उम्मीदवारों की बात हो गई भाई, जिनको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। भाई कोई दूसरे दल से आता है, आप यहाँ पर आए, आपने उनका टिकट काट दिया। जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो वहाँ पर सिर्फ झंडा बैनर पोस्टर लेकर जय हो के नारे लगाता है, और जो दूसरा दल का व्यक्ति आता है जो की वो जीता हुआ है या जो भी संभावना है उसके आधार पर उसको टिकट मिल जाता है। मैं यहाँ पर कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ और उनसे उनकी राय जानना चाहता हूँ। जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं।
मैं मोटाराम सऊ बोल रहा हूँ, गांव नया बाटड़ू, तहसील बाईतू, जिला बाड़मेर से।
जी, जिला बाड़मेर से मोटाराम जी, आप कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। भाई क्या बात है, आप लोग कार्यक्रम में जो शामिल होते हैं वो लगातार शामिल होते हैं।
जी
जी, अपनी बात रखें आप।
मैं तो काफी दिनों के बाद में शामिल हुआ।
जी बताए
जी, जो दल बदलने वाले नेता होते हैं उनकी ना तो कोई विचारधारा होती है और ना ही कोई बात, केवल अपना उनका निजी स्वार्थ होता है। जैसे ही किसी पार्टी में उसका निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वे दूसरी पार्टी में चले जाते हैं।
ठीक बात है,
बहुत पते की बात कह रहे हैं मोटाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने दो बातें कही
जी,
कि आप स्वार्थी हैं, आपकी कोई राजनीतिक या फिर प्रतिबद्धता, जिसको कहते हैं कि वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, और जहां मौका मिला आपने आप सटक लिए।
देखिए, आया राम गया राम तो स्वार्थी होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन हम कहने से बचते रहते हैं और ये उचित नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों से बड़ा स्वार्थी कोई चीज है। वो भी स्वार्थवश ही उनको ले रहे हैं और अपनी आइडियोलॉजी को ताक पे रख के। हास्यास्पद स्थिति तो हुई उत्तराखंड में, जबकि वहाँ इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा साहब, और एक प्राकृतिक आपदा होती है उसके बाद उनको हटाया जाता है और वो अपने कई मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ पाला बदल लेते हैं।
उनकी बात तिवारी, एनडी तिवारी का आप उदाहरण लीजिए, एनडी तिवारी ये, खुद भले ही पार्टी में शामिल नहीं है
जी,
लेकिन जीवन भर उन्होंने कांग्रेस की वकालत की, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, और उन्होंने अपने बेटे रोहित शेखर को टिकट बीजेपी से दिलवा दिया, भले ही वो खुद जो है खुद शामिल नहीं हुए,
खुद शामिल नहीं हुए, लेकिन बेटे को शामिल कराने उनका भाजपा कार्यालय जाना ही बहुत बड़ा संकेत था, बहुत बड़ा। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए झटका तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पास, तिवारी जी के पास वोट नहीं है, लेकिन सांकेतिक तो चोट पड़ी, जबरदस्त पड़ी, इसमें कोई शक नहीं है।
सांकेतिक चोट पड़ी एक श्रोता को शामिल कर
जी
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो
जी,
नाम नाम बताएं।
मैं अजय कुशवाहा बोल रहा हूँ सर।
अजय कुशवाहा जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
बारवा रजापगा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
जी
सवाल बताइए,
बोलिए।
हाँ सर, कह रहा ना कि भाजपा में इस समय केंद्र सरकार है।
हाँ हाँ।
और उसका दाल एकदम हरी भरी है।
हाँ हाँ।
सब लोग लालच में आकर पड़ रहे हैं, कांच की सरकार आने वाली है। यहाँ पर जो नेता लोग पुराने उनको छोड़ दिया है, और केवल नए नए पार्टी के लोग बदल बदल के इसमें आ रहे हैं।
जी।
विधानसभा फाइनल में गंगा सिंह है, उनको नहीं बदल रहे हैं, कांच के बुड्ढे रहे हैं, एक भी काम नहीं किए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अब जो उससे भी बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये कि कार्यकर्ता क्या करे भाई। कल तक वो कांग्रेस का झंडा लेके रीता जी के साथ चल रहा था, अब क्या वो रीता बहुगुणा जब अब बीजेपी में आ गई हैं, तो क्या वही कार्यकर्ता
जी
अब क्या बीजेपी को वोट दे देगा? रीता का जो कार्ड
नहीं, मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम बहुधा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। मतलब जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उदासीन हो जाएंगे, रीता बहुगुणा जी को दिल से समर्थन नहीं करेंगे, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्रेसिवली उनको हराने के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे केसेस में बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है। और जो रिपोर्ट्स ग्राउंड से आ रही हैं उसमें कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की डेट तक अब अच्छी नहीं है।
नहीं, ये तो सारी मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से दल बदल होता है तो एक एक जो मतदाता है उसके लिए कितने असमंजस की बात है।
बहुत बहुत, इसमें क्या शक है। और ये हजारों सैकड़ों दर्द भरी कहानियां पैदा हो रही हैं रोज। आप कल्पना करिए, कल मैंने टीवी पे देखा, हमीरपुर से कार्यकर्ता आए हुए थे लखनऊ दफ्तर में, और वो अपना दर्द बयां कर रहे थे कि मैं तो 30-40 साल से झंडा ढोता ही रहा, और आज जब टिकट की बारी आती है तो बाहरी आकर ले जाता है। तो ये दर्द भरी कहानी है, लेकिन आपने सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं है, कमोबेश हर दल में हो रहा है ये।
हर दल में हो रहा है। एक श्रोता को शामिल कर रहा
जी,
नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ, मैं नवादा से बोल रहा हूँ, उस्मान गनी अंसारी।
नवादा से उस्मान गनी अंसारी साहब जी, अपनी बात कहें आप।
भारत में प्राय राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का वर्तमान समय में अभी कोई नैतिकता नहीं है। ये लोग किसी भी प्रकार से 100 सीट पाना चाहते हैं, जीत कर जाना चाहते हैं, और फिर मजे से राजनीतिक पार्टी होने के नाते, नेता और मंत्री होने के नाते इसका लाभ उठाना चाहते हैं। कोई भी पार्टी में वर्तमान समय में नेता लोग समर्पित नहीं रह गए हैं, कुर्सी चाहते हैं, सिर्फ कुर्सी। इससे भारत का राजनीतिक विकास या स्थायित्व या राजनीतिक स्थायित्व नहीं आ पा रहा है।
सिर्फ कुर्सी की लालसा है, सिर्फ कुर्सी की लालसा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, एक श्रोता को और यहीं पर मैं कार्यक्रम में शामिल कर रहा
हूं।
जी नाम बताएं।
हेलो
जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
शर्मा साहब नमस्कार।
नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
जी? मैं बाड़मेर राजस्थान से बबूता राम जाकड़ बात कर रहा हूं।
वाह वाह, बाड़मेर की लाइनें बहुत क्लियर होती हैं। जी बात रखें।
जी सर, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते हैं तो कॉल लग जाता है। और जहाँ तक आज का विषय है दल बदल वाला, तो ये जो नेता लोग हैं, ये मैं वही बात करना चाहता हूँ जो हमारे पहले भाई मोटराम जी ने कही थी कि निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, और जैसे मौसम बदलता है वैसे ये नेता लोग बदलते रहते हैं। तो इनको सबक सिखाना वो तो आम जन के हाथ में है, जो जन है वो अगर इनको सबक सिखाएं और एक दो बार पटक दे तो अच्छा रहेगा, फिर ये बार बार अदला बदली नहीं करेंगे। और ये
जनता
भी अपने वैसे भी अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना लालच करते हैं, बाकी जो वादे करते हैं वो तो कभी भी पूरा नहीं करते हैं और बदलते रहते हैं
जी। जनता 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 सबक सिखाए। मैं यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप, हालांकि राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है, आप आवाज सुन रहे हैं
जी,
अगर मान लीजिए कि आपके इलाके में चुनाव हो रहा हो, जिस नेता को आपने वोट दिया हो वो नेता पार्टी बदल ले, तो क्या करेंगे आप? मतलब पार्टी को वोट देंगे कि फिर नेता को वोट देंगे, किसको देंगे?
नहीं, जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ पर डिक्लेयर तो नहीं करना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर मैं बीजेपी में हूँ और कोई नेता जैसे फेवरेट है मेरा, तो वो अगर पार्टी बदल रहा है तो उनको बदलने दो, हम बीजेपी में है तो हम बीजेपी में ही रहेंगे।
मतलब आपके लिए व्यक्ति व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहता हूँ।
हाँ जी, हाँ जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन सज्जन से अभी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैंने यही सवाल पूछा कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके सामने ये दुविधा आती है तो आप क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। तो जब जब लोग वोट देने जाएंगे
जी,
तो उनके लिए क्या ये जो उदाहरण है ये सब पे लागू होता है या नहीं लागू होता है?
मेरे ख्याल से नहीं लागू होता है। देखिए, इनकी बात में भी दुविधा है कि पार्टी को महत्व देंगे, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जनता को सबक सिखाना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स को। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के ये समर्थक हैं और वहाँ पे कोई पारा ट्रूपिंग से आ जाता है, समझिए कांग्रेस पार्टी से आ जाता है, तो उसको तो सबक सिखाएंगे या पार्टी को वोट देंगे? यहीं पे तो दुविधा है और यहीं पे दर्द की कहानी पैदा होती है, असमंजस होता है।
एक फेसबुक पर एक टिप्पणी है, मैं उठाना चाहूंगा
जी।
संजय हैं, संजय शरण बिश्नोई
जी,
ये कहते हैं कि स्वार्थी नेताओं द्वारा मेढक की तरह उछलकर पार्टी बदलने से मतदाताओं की भावनाएं आहत होती हैं। इस तरह राजनीति को व्यक्तिगत लाभ का स्रोत बनाना लोकतंत्र के हित में नहीं है और इसके लिए मतदाता को राइट टू कॉल का अधिकार मिलना चाहिए।
राइट टू रिकॉल पे बहुत दिनों से बहस चल रही है, अभी तक सिर्फ नोटा आ पाया है कि कोई कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, ये तो नोटा में हम लगा सकते हैं, लेकिन राइट टू रिकॉल इसके लिए ही बिहार का आंदोलन हुआ था 1974 का और पोस्ट इमरजेंसी के बाद, और ये जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि राइट टू रिकॉल हम लाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आ पाया। मेरे ख्याल से देश हित में तो वो होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ कैंडिडेट स्वार्थी नहीं होते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी अपने इंटरेस्ट में काम करती हैं और वो स्वार्थी होती हैं, इसीलिए सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा है इस देश में।
एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं
जी,
जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
स्वामी देवदास।
हाँ हाँ, देवदास स्वामी जी,
ये गांव किशनपुरा जिला चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ मोहनलाल जी।
अच्छा अच्छा, जिला राजस्थान चूरू से बोल रहे हैं आप जी।
जी सर, ये जो राजनेता होते हैं वो बादलों की तरह होते हैं, हवाओं के साथ बहते रहते हैं, ये जिधर हवा चलती है उधर चलते हैं, मलाई जहाँ भी मिल रही है वहाँ ये शामिल होना चाहते हैं, मौका प्रस्त कह लीजिए इनको या तत्काल लाभ के लिए जिधर हवा बह रही है उधर ये बह रहे हैं। और मतदाताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको एक बार मिल करके और थोड़ी सी शिक्षा दे दें तो भविष्य में इस प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है।
जी, बादल की तरह होते हैं, हवाओं के साथ उड़ते हैं और जहां पर हवा चल रही है वहां चले जाते
जी।
लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां जीत ही जाएंगे आप?
कोई गारंटी नहीं है, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि बहुधा होता है कि हार ही जाते हैं, मैं दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूँ ये, लेकिन उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे और जो पार्टियां इनको शामिल करती है उनको भी लगता है कि बड़े पावरफुल।
जो पार्टी शामिल कर रही है वो तो इस आधार पर शामिल कर रही है ना कि भाई पांच बार से ये लगातार विधायक हैं, ये इन्होंने इनके भी कुछ पिछलग्गू हैं, इनके भी अपना वोट बैंक है, वो वोट बैंक पूरा का पूरा आ जाएगा भाई, इतना सब गणित करने के बाद ही वो सब
ठीक बात
मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं पार्टीज में तभी आपको टिकट दे रहे हैं
जी। लेकिन गारंटी इसलिए नहीं होती है कि वो पार्टियां भूल जाती हैं कि मौजूदा विधायक जो पाला बदल रहे हैं वहां भी तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वहां भी होती है, पार्टी के खिलाफ भी होती है और व्यक्ति के खिलाफ भी होती है। इसीलिए ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे। और अभी आप देखिएगा इतने लोगों ने पाला बदला है और क्या हश्र होता है, 12 मार्च को सब सामने आ जाएगा।
एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
नमस्कार।
नमस्कार, क्या नाम है बंधु?
मैं ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट सगोरिया स्कूल घाटी से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ।
बसंती लाल जी बोल रहे हैं जी, अपनी बात रखें आप।
जैसे पाला बदलने वाली बात कर रहे सर, है ना? तो ये पाला बदलने अदला बदली में मतदाता का मतलब क्या ये सच हो सकता है कि वो जीतेंगे, मतदाता जिताएंगे उनको, ऐसा हो सकता है क्या?
वही तो बता रहे थे अंबिकानंद जी, इस बात की कोई गारंटी तो है?
कोई गारंटी नहीं।
हाँ जी, और गारंटी मतलब मतलब होना नहीं चाहिए, मतदाता पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मतदाता किसको किसको वोट देगा, क्या मतलब किस दिन में बूथ में जाने के बाद क्या हो इच्छा बदलती है, जो कार्य करेगा उनको तो वोट मिलेगा।
हाँ, लेकिन ये बताइए कि मतदाता क्या करे भाई, मतदाता पिछली बार
मतदाता तो जैसे उनको तो अपना मत तो देना ही है ना सर।
हाँ,
तो किसको देंगे, दल बदलू को देंगे?
नहीं नहीं, दल बदलू को तो देना ही नहीं चाहिए ना सर,
यही बात है ना।
दल बदलू को वोट नहीं देना चाहिए, इनका ये कहना। एक और श्रोता को शामिल करके उनकी भी जरा राय हम जान लेते हैं जी। नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
नमस्कार सर, मैं फिरोज अहमद जेपी नगर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं सर।
अच्छा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं जी। नाम क्या बताया आपने?
फिरोज अहमद सर।
फिरोज अहमद
जी सर,
जी अपनी राय रखें आप।
जी सर, जैसे दल बदलू दूसरी पार्टी से जाते हैं सर, इनकी सदस्यता या इनको ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, इनको जो है न रखा जाए पार्टी में, नहीं शामिल किया जाए इनको।
बहुत
महत्वपूर्ण सवाल,
पूरी बात सुन लेते हैं इनकी
जी।
हाँ,
इनको नहीं रखना चाहिए, और अगर जाए अगर किया इनको शामिल कर लिया तो इनको जो है जो और चुनाव देने वाले हैं इनको सबक देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए इनको।
दो चीजें कही, एक तो सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और दूसरी पहली बात कह रहे हैं वो।
पहली बात देखिए, अभी तक इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप दल नहीं बदल सकते हैं, और इस पे भी बहुत आज 50 वर्षों से डिबेट चल रहा है।
देखिए, दो तरह की चीजें, एक चुनाव पूर्व गठबंधन दल बदल और एक चुनाव के बाद दल बदल।
चुनाव के बाद भी जो दल बदल का कानून है उसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप मान लीजिए आप राज्यसभा सदस्य हैं किसी पार्टी में, फर्ज करिए, और आपको वो पार्टी पसंद नहीं कर रही है या पार्टी से निष्कासित कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ अमर सिंह समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, लेकिन और वो पार्टी से भी निष्कासित हो गए, लेकिन वो संसद सदस्य से निष्कासित नहीं होते हैं।
हाँ,
नहीं होते हैं। हाँ, एक ही शर्त पे वो निष्कासित हो सकते हैं, जब व्हिप पार्टी व्हिप का अनुपालन न करे,
उल्लंघन करे तब।
हाँ, तो ये बड़ा जटिल कानून है, और इसीलिए मैंने कहा ना, सारी राजनीतिक हमाम में सब नंगे हैं। राजनीतिक पार्टियां कभी इस किस्म का कानून नहीं लाएंगी जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट को हिट करता हो, और इसीलिए आज दल बदल के खिलाफ कोई भी सशक्त कानून नहीं है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि यह जल्दी बनेगा।
मतलब
यह उसी तरह का बात है कि जब तनख्वाह बढ़ाने का टाइम आता है तो सब सांसद एक हो जाते हैं।
हाँ,
तो अपने इंटरेस्ट पे चोट ना हो, जब आरटीआई का मसला होता है फिर सब सांसद एक हो जाते हैं।
मतलब अपना
हित देखते हैं, और सबका कॉमन हित है, इसलिए वो ऐसा कानून आने नहीं देंगे।
क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने कुछ कर लिया तो उनके दल में लोग कहाँ से शामिल होंगे, और जो चुनावी बयार है, जो चुनावी बादल आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो जी, नमस्कार सर, मैं कुलवीर बाकर बोल रहा हूँ, गांव बिरान, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से।
जिला राजस्थान से, वो राजस्थान से बोल रहे हैं जी, अपनी बात रखें आप
जी। दल बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बदले। लेकिन पहले ये एक दूसरे पर इतना आरोप लगाते हैं, ऐसे ऐसे नम से संबोधन करती हैं, और फिर उसी पार्टी में चले जाते हैं। मतलब लोगों की मानसिकता में तो अपनी छवि मतलब साफ रखी है, चाहे किसी पार्टी में जाइए और नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करना, अभी ये आए पंजाब में कांग्रेस में आ गए नवजोत सिंह, सोनिया गांधी को मुन्नी कहकर मतलब शो में बुलाते थे मुन्नी शब्द इस्तेमाल किया गया था सोनिया गांधी के लिए, उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उसी की पार्टी में चले गई।
और अब कह रहे हैं कि मैं तो मूल रूप से कांग्रेसी ही हूँ, मेरी जड़ें कांग्रेसी हैं।
उन्होंने मुन्नी शब्द कहा था, लेकिन लोगों को तो संदेश अच्छा दीजिए। अभी ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, बिल्कुल
भारत की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता को और शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
जी सर नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा है सर, गांव वाजिदपुर तुरकलिया पोस्ट नैनी और सारण बिहार से बोल रहा हूं।
बिहार से बोल रहे हैं जी। विजय कुमार अपनी राय रखें आप।
जी सर मेरा राय सर यही है कि जो जब नेता लोग दल बदलते हैं कि उस एरिया मेरा सीट निकलने वाला नहीं है, तभी जाके दल बदलते हैं, देखते हैं कि वो पहले ही काम कुछ करते नहीं है जिस एरिया से जीते होते हैं, और दूसरे एरिया में इसलिए जाते हैं कि वो मतलब इस एरिया से तो देखते हैं सीट निकलने वाला है नहीं, तो इसलिए सब बदलते हैं, अपना पार्टी भी बदल देते हैं, देखते हैं कि इस साइड का तो जनता को हम और पूर्वक बना नहीं सकते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि भाई जब उनको नेता को ये लगने लगता है कि अब दाल ना गलेगी
इस पार्टी से
दाल नहीं गलेगी, तो फिर वो दूसरे
उस पार्टी पे चले जाएंगे।
लेकिन वहां से भी इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि जीती जाएगी?
कोई गारंटी नहीं,
कोई लोग मतदाता तो मतदाता है ना, मतदाता तो उल्टा वोट भी डाल सकता है।
बिल्कुल, और बहुधा डालता है।
तो ये चीज क्या राजनीतिक दलों के जो जोड़ गठित कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आती?
देखिए उनको समझ में आती है और कुछ गलतफहमी के शिकार हैं। गलतफहमी क्या होती है राजनीतिक पार्टियों को, वो समझते हैं कि हमारा हवा बुलंद है, हमारे पक्ष में हवा चल रहा है, इसलिए लोग हमारे पार्टी में आना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि बास्किंग इन दिस ग्लोरी, वो बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हैं कि हवा मेरे पक्ष में है इसीलिए लोग मेरे यहाँ आना चाह।
अच्छा, इसका घाटा क्या क्या है? देखिए एक नवल जोशी हैं, फेसबुक पर टिप्पणी इन्होंने की है कि राजनीतिक पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है, वैश्विक स्तर पर ये संकट है
जी,
और राजनीतिक पार्टियां एक गिरोह से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, और इन सब की संरचना उद्देश्य स्तर सब समान है, केवल लोगो और बैनर का फर्क है।
बात सही कह रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा इशारा इसी से समझिए मोहनलाल जी।
हाँ।
कि आज अजीत सिंह की क्या स्थिति है।
हाँ।
कोई आदमी विश्वसनीय नहीं मानता है,
हर सत्ता में रहे वो।
जी जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी काडर बेस्ड पार्टी नहीं रह जाएगी और कांग्रेस की छवि तो खराब ही है और नष्ट हो जाएगा। मतलब अजीत सिंह के राह पे उनकी भी छवि चली जाएगी।
बहन मायावती मतलब जिन मुख्तार अंसारी को अपराधीकरण और इन सब चीजों के लिए कह रही थी
जी,
आज वही अंसारी परिवार
और उनके प्रशंसा कर रही है,
अब कह रही है इधर आ गए
जी,
तो अब वो सारे तर्क जो पहले देते रहे नेता एक दूसरे के खिलाफ सब खत्म
जी। यही तो बात है, यही तो दुर्भाग्य है। और जैसा कई दर्शकों ने कहा कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बन रहा है
जी। एक आखिरी श्रोता को शामिल कर रहा हूं। जी नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
हाँ सर, मैं प्रशांत कुमार राजभर बोल रहा हूँ सर।
हाँ प्रशांत जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें आप।
कह रहा हूँ कि लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए लोगों को।
हाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप दल बदलू को वोट देंगे कि नहीं देंगे? मान लीजिए किसी को आपने
नहीं देंगे। जी बिल्कुल नहीं देंगे दल बदलू लोगों को।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम था
जी।
भाई मतदाता भी अपना मन बनाता है, और मतदाता की क्या नेताओं को हवा नहीं होती है?
गलतफहमी होती है जैसा मैंने कहा, अगर नेताओं को सच्चाई
इसको
पता
गलत फहमी कहें या खुश फहमी कह लें?
खुश फहमी, आप बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुश फहमी है।
और इसी खुश फहमी में मतलब चाहे दल बदल लें, चाहे काम आपने किया या नहीं किया
जी,
मतदाताओं के लिए भी एक सवाल, राजनीतिक दलों के लिए भी
जी जी। और ये आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में इस बात को साबित करेगा, इस बात को बखूबी साबित करेगा कि दल बदलने का हश्र क्या होता है।
अच्छा इतने ज़्यादा लोग मतलब अब कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे आईपीएल का मैच है ना, टीम कौन सी, कौन सा प्लेयर किसमें, तो वही स्थिति इधर भी हो गई।
आईपीएल से मैं तो कहूँगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जैसा, पार्टियों का भविष्य हर सेकंड फ्लक्चुएट वहाँ कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया तो कुछ फ्लक्चुएशन हुए, कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो होगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव होगा।
तो अब ये देखना होगा कि जब मतदाता वोट डालते हैं तो वो किसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं रहते, पार्टी को वोट देते हैं या नेता को वोट देते हैं, कार्यक्रम में वक्त बस इतना ही है। सुबह नमस्कार भारत के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। समाचारों का वक्त नहीं है, दीपक जसरोठिया ने स्टूडियो संभाला। अंबिकानंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
धन्यवाद।
मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।